नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर वैश्विक संगठनों से शुभकामना संदेश मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का एक दिन शेष, सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। बिहार में नए इलाकों में बाढ़ से 17 जिलों के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का भांडा फोड़कर 2000 करोड़ रुपए से अधिक के 500 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। और इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के देश में प्रवेश पर रोक लगाई। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शामिल है, जिसकी कुल लागत 79,150 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान के अंतर्गत आने वाले कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य विद्यालयों का लोकार्पण किया और 25 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई परियोजनाएं आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देंगी।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा।
श्री मोदी ने कहा कि देश के जनजातीय समुदाय को विकसित और सशक्त किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता।
झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था और अब कुछ ही दिनों के आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है।
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य में लोगों की पहचान और संस्कृति को खतरे में डालने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की आलोचना की है। श्री मोदी ने आज हजारीबाग में परिवर्तन महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से हटाने के बाद ही राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने भाजपा की परिवर्तन यात्रा को केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि राज्य के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन बताया। उन्होंने झारखंड की बेटियों, भूमि और आजीविका की सुरक्षा का वायदा किया। श्री मोदी ने राज्य में सरकार बनने पर इन तीनों की सुरक्षा की गारंटी का वादा किया। उन्होंने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को दोषी ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए उन्हें वोट दिया था। श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण संथाल परगना की जनसांख्यिकी भी बदल गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। सभी प्रमुख दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज भिवानी जिले में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को भरमाया जा रहा है।
उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं है। कहते हैं हमने 24 फसल है जिनपे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं है यहाँ हरियाणा में। कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सांसद हेमा मालिनी ने आज कुरुक्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। श्री राजनाथ सिंह ने यमुनानगर जिले के सधौरा और कुरुक्षेत्र जिले के पिहुआ में रैलियां की। श्री सिंह ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया।
जनता के हितैषी बनते हैं। एक आंकड़ा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार यहां पर रही है, उन्होंने हरियाणा राज्य को केवल 21,564 करोड़ रुपए दिए, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक हमारी सरकार ने हरियाणा को 78,345 करोड़ दिया है। ये कैसे आकर कहते हैं कि हम हरियाणा को बनाना चाहते हैं, हरियाणा की गरीबी दूर करना चाहते हैं, हरियाणा की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिसार से पार्टी उम्मीदवार संजय सत्रोदिया और आदमपुर से पार्टी उम्मीदवार भूपेंद्र बेनीवाल के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता की प्रतिबद्धता जीवन भर की प्रतिज्ञा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रण लें। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों की अटूट भावना को नमन किया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में अमृत और अमृत 2.0, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गोवर्धन योजना के तहत 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि इससे स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाई मिलेगी। विभिन्न विश्व संगठनों के प्रमुखों ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। विश्व नेताओं ने संदेशों में कहा कि इस अभियान से स्वच्छता और साफ सफाई के माध्यम से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने पहल के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला।
The Indian government made sanitation and hygiene national priorities by mobilizing resources, engaging communities, and igniting a movement to eliminate open defecation and promote a cleaner, healthier nation. I commend the Swachh Bharat mission for its focus on equity, local engagement, accountability, and sustainability.
विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि मिशन ने बेहतर स्वच्छता के माध्यम से भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है।
10 years ago, the Swachh Bharat mission launched with a very bold vision. And that was to transform India through improved sanitation. And today, as we reflect and we celebrate this initiative's remarkable achievements, the World Bank is very proud to have been a steadfast partner in this journey. We look forward to continuing our partnership with India, promote sustainable development and improve the lives of young people all over the world.
एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु अस्कावा ने कहा कि बैंक को शुरू से ही दूरदर्शी पहल पर देश के साथ साझेदारी करने पर गर्व है।
Over the last decade, the Swachh Bharat mission has transformed the lives of millions across India, providing cleaner cities and better sanitation. I'd like to commend the Prime Minister Narendra Modi for spearheading this transformational campaign, which has empowered women and the urban poor, improved health and created new opportunities.
टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी श्री मोदी को बधाई दी। नेपाल के काठमांडू में भारतीय दूतावास ने आज 155वीं गांधी जयंती मनाई। भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और अन्य सभी भारतीय अधिकारियों ने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजदूत ने दूतावास के स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देशभर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी जयंती पर स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बिहार में आज कुछ नए इलाकों में बाढ़ आने से 17 जिलों में बाढ़ पीड़ितों की संख्या लगभग 15 लाख हो गई है। कोसी, गंडक, महानंदा, कमला बलान, बागमती और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से राज्य के अन्य हिस्सों और निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है। सीतामढ़ी, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल और सहरसा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा और किशनगंज जिलों के कई गांवों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन अब विभिन्न इलाकों में बिजली की आपूर्ति करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। वहीं लोगों की सुविधा के लिए जनरेटर्स के माध्यम से भी बिजली देने का काम चल रहा है। जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए कई स्थानों पर बोट एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सा मदद भेजी गई है। अभी तक 2.5 लाख फंसे हुए लोगों को NDRF और SDRF ने सुरक्षित निकाला है। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। सप्ताह के दौरान झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानम, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का भांडा फोड़कर 2,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 500 किलोग्राम से अधिक कोकीन जब्त की। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के अपर पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि ये हाल के दिनों में दिल्ली में सबसे बड़ी बरामदगी है।
इस ड्रग रैकेट को मिडल ईस्ट से एक हैंडलर कंट्रोल कर रहा था और इंडिया का इसका जो मेन रिसीवर है तुषार गोयल, उसको और उसके 2 एसोसिएट्स हिमांशु एंड औरंगजेब प्लस एक रिसीवर जो कुरला मुंबई से आया हुआ था भरत जैन, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से 562 केजी कोकीन प्लस 40 केजी थाई मैरवाना वो रिकवर की गई है। कोकीन की कॉस्ट अराउंड 10 करोड़ पर केजी इंटरनेशनल मार्केट में और इस मैरवाना की कॉस्ट 40-50 लाख पर केजी है।
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बचाव और राहत कार्य तेज करने को कहा है। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्री इसराइल कास ने कहा कि ईरान के साथ हाल के तनाव के बाद ये फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट।
इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को आज अवांछित व्यक्ति घोषित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि इसराइल पर ईरान के हमले की स्पष्ट निंदा नहीं करने वालों को इसराइल में आने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने श्री गुतरश पर इसराइल के शत्रु गुटों का समर्थन करने का आरोप लगाया। इसराइल पर कल रात ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने यह फैसला किया है। हमले के बाद श्री गुतरश ने संघर्ष पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने क्षेत्र में एक के बाद एक बढ़ते तनाव के प्रारूप पर चिंता व्यक्त की थी। इसराइल के इस कदम को देश और संयुक्त राष्ट्र के बीच कूटनीतिक तनाव, विशेष रूप से क्षेत्र में जारी संघर्ष से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में रुकावट के रूप में देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
भारत ने चीन में चल रही BWF विश्व जूनियर मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप ई के आखिरी मैच में भारत ने तुर्की को 99 के मुकाबले 110 अंकों से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर वैश्विक संगठनों से शुभकामना संदेश मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का एक दिन शेष, सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। बिहार में नए इलाकों में बाढ़ से 17 जिलों के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का भांडा फोड़कर 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के 500 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। और इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के देश में प्रवेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।